അന്താണം ണമോ സിദ്ധാണം നമോ ആര്യാണം ണമോ വധ്യായാണം നമോ ലോയേ സൗവ്യസാഹനം ഏസോ പഞ്ചണമോയാരു സർവപാവപ്പനാശനം മംഗളാണം ച സൗവ്യശൻ പരമംഹൂരി മംഗളം ശത്താരേ മംഗളം അരിഹന്ത മംഗളം സിദ്ധാ മംഗളം സാഹു മംഗളം കേവലീപണത്തോ ധമ്മോ മംഗളം ചത്താരി ലോകുത്തമാ അരിഹന്ത ലോകുത്തമാ സിദ്ധാ ലോകുത്തമാ സാഹു ലോകുത്തമാ കേവലീപണത്തോ ധമ്മോ ലോകുത്തമോ ചത്താരി ശരണം പ്രവജാമി അരിഹന്തേ ശരണം പ്രവജാമി സിദ്ധേ ശരണം പ്രവജാമി സാഹു ശരണം പ്രവജാമി കേവലീപണത്തം ധമ്മം ശരണം പ്രവജാമി മോക്ഷമാർഗസ്യ നേതാരം ഭേതാരം കർമ്മ ഭൂവ്രതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയേ വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയേ വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയേ സത്വാർത്ഥ സൂത്ര മഹാശാസ്ത്ര ജോ സമഗ്ര ജൈൻ പരമ്പരാ കാ ഏക് ബഹുത് അപൂർവ ഗ്രന്ഥ ഹൈ ഇസ് ഗ്രന്ഥ കേ ആധാർ സേ ആട് കർമ്മോ കേ സന്ദർഭ മേ ഹംനേ യഹാ ചർച്ച വിഗത ദിനോ സേ പ്രാരംഭ കർ രഖി ഹൈ क्या है ये आठ कर्म, क्या स्वरूप है इन कर्मों का और हमारी लाइफ किस तरह से प्रभावित होती है इन कर्मों से, ये चर्चा हम कुछ दिनों से यहाँ कर रहे हैं। तीन प्रकार के मूल कर्म हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। पिछले दिनों में हम इस बात को काफी क्लियर कर चुके हैं। हमारे जो भाव होते हैं, राग द्वेष आदि भाव, वे भाव कर्म कहलाते हैं। उन्हें भाव कर्मों को राग द्वेष आदि के रूप में देखा जा सकता है, कषायों के रूप में देखा जा सकता है। उन भावों के कारण कुछ कर्म परमाणु जो पुद्गल रूप हैं, जो परमाणु रूप हैं, मिट्टी की तरह हैं, धूल की तरह हैं, वे आत्मा के साथ में आकर के बंधते हैं। उन कर्मों को कहते हैं द्रव्य कर्म, जो कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन आठ रूपों में देखे जाते हैं। और जब उन ज्ञानावरणी आदि कर्मों का फल मिलता है तो उसके फल में मिलने वाले संयोग, महल, मकान, घर, बार, मोबाइल, गाड़ी, चश्मा, कपड़े, जेवर, गहने, जो भी हैं, वो सब कहलाते हैं नौ कर्म। हाथ से आदि नौ कर्म नहीं, कुछ लोगों को ऐसी शंका हो रही थी कल, हाथ से आदि कर्म जो है वे नौ कषाय हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं नौ कर्म के बारे में। नौ कर्म की संख्या नहीं है शास्त्रों में कहीं भी। समग्र जैन शासन में कहीं भी नौ कर्म की संख्या नहीं है। यहाँ नौ कर्म शब्द में जो नौ है वो नाइन का सूचक नहीं है, संयोगों का सूचक है। लैपटॉप है, घड़ी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब हमारे नौ कर्म हैं। जितने साधन सुविधाएं हमारे को मिली हैं, प्राप्त हुई हैं, उन सब को नौ कर्म कहते हैं। क्यों मिले हैं वो सब नौ कर्म, कहां से आए हैं वो सब नौ कर्म? द्रव्य कर्म के फल में मिले हैं। जो द्रव्य कर्म है उसके फल में हमारे को नौ कर्म की प्राप्ति होती है। अब द्रव्य कर्म कहाँ से आता है? तो हम भाव कर्म करते हैं उससे द्रव्य कर्म बनता है। भाव कर्म माने राग द्वेष आदि भाव मैं विगत दिनों में चर्चा कर चुका हूँ, मैं उसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ 2-5 मिनट में आपके सामने, जिससे वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी हमारे भाव होते हैं, कोई व्यक्ति भाव से रहित नहीं होता, परिणामों से रहित नहीं होता। परिणाम माने रिजल्ट नहीं, परिणाम माने हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं। सबके मन में कुछ न कुछ हर समय चलता रहता है, 24 घंटे हमारे मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा है उसे कहेंगे हम भाव। वो है भाव कर्म, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, किसी की भलाई के लिए हो सकते हैं, किसी की बुराई के लिए हो सकते हैं, जो भी होंगे वे सब कहलाएंगे भाव कर्म। जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म बनते हैं। अच्छे परिणाम होंगे, अच्छे भाव होंगे, अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे भाव होंगे, बुरे कर्म बनेंगे। किस तरह के भावों से कैसा कर्म बनता है, ये अपना यहाँ टॉपिक चल रहा है। कुल मिला के भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म का बंधन हुआ, और द्रव्य कर्म का जो बंधन होता है उसके फल में मिले हैं 9 कर्म। उसमें शरीर भी 9 कर्म है, माता पिता, परिवार, भाई बहन, कैसा मिलना, ये सब डिपेंड करता है द्रव्य कर्म के उदय पर। देखो आप, हमारी बिल्कुल नहीं चलती है, हम चलाना तो चाहते हैं दूसरे पदार्थों पर, जबरन चलाना चाहते हैं, जबरदस्ती उनमें फेरफार करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन क्या है हमारे कंट्रोल में। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा जन्म कौन सी जगह पर होना है, क्या ये हमारे कंट्रोल में था। जिस जगह पर हमारा बर्थ हुआ, क्या वो हमने सोच करके जगह डिसाइड की थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो गुजराती हैं, बोलिए आप तो राजस्थानी हो। मैं राजस्थानी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, गुजरात में जन्म होता तो गुजराती हो जाता। माने हम जिस जगह पर जन्म ले रहे हैं, जिस जगह पर हमने जन्म लिया है, इसमें हमारा कंट्रोल तो नहीं चलता है ना। जन्म में हमारा कंट्रोल नहीं है, जन्म के बाद में कैसे संयोग हमारे आसपास में होंगे उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा जन्म हुआ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म फुटपाथ पर होता है, किसी व्यक्ति का जन्म अच्छे स्थान पर होता है, किसी का अच्छे परिवार में होता है, किसी का अच्छे कुल में होता है, किसी के कुल परिवार में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती है, भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, और किसी के यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। तो आखिर ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, इस अंतर के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। जो भी कारण है वो है द्रव्य कर्म का उदय। ये द्रव्य कर्म पिछले जन्म में जैसे हमने किए थे उसके हिसाब से वर्तमान की सारी व्यवस्थाएं हैं, और वर्तमान में जैसा कर रहे हैं इससे हमारी फ्यूचर की सारी प्लानिंग होगी। अब आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के नाम पर, वो मुझे नहीं मालूम। आप लोग फ्यूचर के नाम पर जो इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं वो तो फ्यूचर की प्लानिंग है ही नहीं, वो तो यही रह जाएगा। हम लोग जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, जो कुछ जोड़ रहे हैं, जो कुछ संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी तो साथ में नहीं जाएगा। नहीं साहब, कोई व्यक्ति ऐसा घमंड करे कि साहब मैं ले जाऊंगा, अगले जन्म में साथ में ले जाऊंगा, तो भैया पिछले भाव से क्या साथ में लाया था, कुछ भी साथ में नहीं लेकर के आया था। कई लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, अरे साहब बहुत नुकसान हो गया, अभी तो पता नहीं सब तरफ मार्केट में जो है वो सब डाउनफॉल चल रहा है, जहां देखो वहां सब तरफ नुकसान, घाटा, सब तरफ बहुत ही हाल खराब है मार्केट का, कितना नुकसान हो गया पता है आपको, लास्ट मंथ कितना लॉस हुआ है मेरे को। आपको लॉस हुआ है, हम तो आपको देखते हैं तो प्रॉफिट में ही देखते हैं। अरे पंडित जी आप जानते नहीं हो हमारे को, आपको कहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अरे भैया असली प्रॉफिट तो हमको ही दिख रहा है, हमें मालूम है आप लेकर के तो कुछ भी नहीं आए थे, तन पे कपड़े हैं वो भी प्रॉफिट में है। बोलो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप जिस लॉस की बात कर रहे हैं, जिस नुकसान की बात कर रहे हैं, ये नुकसान तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा कम है। एक व्यक्ति ने 10 रुपए के शेयर खरीदे, 100 रुपए के शेयर खरीदे, और उन शेयर्स के दाम बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए समझ लीजिए 50,000 हो गए। 100 रुपए का शेयर 50,000 का हो गया, और फिर थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ तो 50,000 से घट करके 20,000 रह गया, तो कहता है 30,000 का नुकसान हो गया। हम कहते हैं आपने खरीदा कितने का था, 100 रुपए का, और आज कितना दाम है उसका? 30,000। तो नुकसान कितने का हो गया? 20,000 का। अरे वाह, कैसा कैलकुलेशन है आपका, क्या कैसा मैथमेटिक्स है आप, कैसे कैलकुलेशन करते हैं? हमारे समझ में नहीं आता है कि जो कुछ भी आपके सामने संयोग दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्व में बंधे हुए कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में जैसा कर्म बांधेंगे वैसा भविष्य में फल मिलेगा, और भविष्य कितना मुझे मालूम है, आप सब फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहते हैं, आपकी सबकी प्लानिंग चलती है, और वो कौन से फ्यूचर की प्लानिंग चलती है तो आप जाने कितने फ्यूचर की। कभी कभी तो ऐसा लगता है 60 से ऊपर वाले बाल जिनके सफेद हो गए हैं, सर में जिनके बाल नहीं बचे हैं, फिर भी प्लानिंग कितनी कंटिन्यू फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है। अब कौन सा फ्यूचर बाकी रह गया आपका, अब और कौन सा फ्यूचर आएगा? अपनी फ्यूचर की बात तो हम बतलाते हैं आपको, आपको पता है आपका फ्यूचर कहाँ बीतेगा। हम कह रहे हैं यदि आपने अपना जीवन तत्व ज्ञान से सहित नहीं बिताया, आपने यदि फिलॉसफी को ढंग से नहीं पढ़ा, यदि आपने कर्म फिलॉसफी को अच्छी तरह से नहीं जाना, तो आपका फ्यूचर है निगूज, आपका फ्यूचर है मंद बुद्धि, आपका फ्यूचर है एक इंद्री, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, ये है आपका फ्यूचर। जिस फ्यूचर की हम प्लानिंग कर रहे हैं, पहले फ्यूचर को समझ लीजिए, फ्यूचर को समझे बिना फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होती। आपने आगे आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड को फ्यूचर समझ लिया, गलत फहमी में है आप। फ्यूचर माने तो भविष्य होता है ना, कितना है भविष्य? सिर्फ 20 साल का भविष्य है आपके पास में, आगे सिर्फ 30-40 साल का भविष्य है, उसके आगे के टाइम पीरियड को भविष्य नहीं कहते, आगे वाला टाइम फ्यूचर नहीं कहलाएगा क्या? उसके बाद के फ्यूचर का क्या होगा, उसके बारे में भी विचार किया है आपने? ये कर्म फिलॉसफी आपको सोचने के लिए मजबूर करती है, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, आपको सोचना ही पड़ेगा इसके बारे में, उसके बाद में क्या होगा, यहां से चले जाने के बाद में क्या होगा। सबसे खतरनाक चीज है मौत, आपको मालूम नहीं है मौत किसे कहते हैं। एक चीज यदि हमारे पास से चले जाती है हम तिलमिला उठते हैं, एक मोबाइल यदि हमारा कहीं छूट जाए ना, और 15 मिनट बाद में हमारे को ध्यान आए तो तुरंत देखना कहां है, मिल नहीं रहा है, मोबाइल मिला के देखना, नंबर मिला के देखना, और नंबर मिलाते हैं और आता है स्विच ऑफ, गया फोन। एक दिन यदि हमारे पास में मोबाइल नहीं हो चले जाए तो हमारे को अधूरा कौन सा लगता है, एक चीज गई है। जवान बेटा मर जाए हमारे को कैसा लगता है, 20 साल का बेटा मर गया हमारा, बात उठी हमारे को, एक गया है ना, मौत जानते हैं किसका नाम है, बेटा नहीं जाएगा अकेला, बेटा भी जाएगा, बहू भी जाएंगे, पोते पोती भी जाएंगे, वो क्या जाएंगे, हम चले जाएंगे तो सब छूट जाएंगे ना, घर भी नहीं रहेगा, मकान भी नहीं रहेगा, बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, लॉकर सब जैसे के तैसे बंद पड़े रहेंगे, उसका नाम है मौत। एक झटके से आपसे सारी चीजें छीन ली जाए उसे मौत कहते हैं। अभी तो किसने हमारी जेब काटी है तो सिर्फ वॉलेट गया है हमारी जेब से, किसी ने हमारा मोबाइल चुरा लिया है, किसी ने हमारी गाड़ी चुरा ली है, सिर्फ एक गाड़ी गई है ना। मौत वो लुटेरा है जो सब कुछ लूट करके ले जाएगा, आपकी क्या प्लानिंग है उसके बाद में, है कुछ प्लानिंग, है कुछ व्यवस्था? जिसको चुरा नहीं सके चोर, जिसको लुटेरे लूट नहीं सके, ऐसा भी एक धन है जिसे ज्ञान धन कहा गया है, जिसकी चोरी नहीं हो सकती है, जिसको कोई लूट नहीं सकता है, सोचना तो पड़ेगा उसके बारे में। क्योंकि देखिए कर्मों का फल अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। जिन कर्मों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मिल बांट करके भोग लेगा। आप कितनी भी इस प्रकार की बातें करते रहें, हम सुबह के प्रवचन में वहाँ बारह भावनाओं की चर्चा करते हैं, महेंद्र भाई के यहाँ एकत्व भावना की चर्चा होनी है आगे। ये व्यक्ति ऐसा कहता है कि बंधता है तो बंध जाने दो, हमारे घर में तो बहुत यूनिटी है साहब, हम लोग सब मिल बांट करके खाते हैं, बाजार से कोई चीज आती है सब मिलकर के उसका उपभोग करते हैं, इतना संगठन है हमारे घर में। कर्म भी बंधेंगे तो कोई बात नहीं, बंध जाने दो, जब उन कर्मों का फल मिलेगा तो सब मिल बांट के भोग लेंगे। आप धोखे में हैं, मिल बांट करके कर्म कोई नहीं भोग सकता है, अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा। आपके यदि सर दर्द हो रहा है तो आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा, आपको यदि पेट दर्द हो रहा है तो आपको अकेले कोई भोगना पड़ेगा, फैमिली का कोई मेंबर आपके साथ में पेट दर्द का भोग नहीं सकता है। आपको जो तकलीफ होगी, आपको जो वृद्धावस्था है, आपको जो खांसी जुकाम हो गए हैं, उन सबको अकेले कोई भोगना पड़ता है। आपके घुटनों का दर्द आपको अकेले कोई भोगना पड़ेगा। किस किस को होता होगा फैमिली में, थोड़ा बहुत तो परसेंटेज, दूसरों को भी बिल्कुल नहीं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, वो निश्चित कर्म अपना फल देते हैं और आप उन कर्मों का फल भोगते हैं। हमने ही बांधे हैं कर्म, हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारा क्षयोक्षम कैसा होगा, हमारे ज्ञान का विकास कितना होगा, ये डिपेंड करता है हमारे पूर्व में बांधे हुए कर्मों पर। कोई बात हमारे को समझ में नहीं आती, कोई बात हमारे को याद नहीं होती, कोई बात हम याद करते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाती है, ये निर्भर करता है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के ऊपर। बहुत से लोग शिकायत करते हुए दिखते हैं, पंडित जी समझ में नहीं आता। अभी भी मेरे को कहा कुछ लोगों ने कि पंडित जी टॉपिक सरल तो लेंगे ना आप, समझ में नहीं आता। क्या आपको कंप्यूटर समझ में आता है कि हाँ वो तो आता है? आपको बिजनेस की बात समझ में आती है कि हाँ समझ में आती है? शेयर मार्केट की बात समझ में आती है कि वो बहुत अच्छे से, वो सब हम अच्छे से समझते हैं, और जब धर्म की बात आती है हमें कुछ नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? बिजनेस को आप जन्म से सीख के आए होंगे ना, बिजनेस करना तो यहां सीखा है हमने, हर चीज हमने यहीं सीखी है, पढ़ना यहां सीखा है, चलना यहां सीखा है, बोलना यहां सीखा है, कमाना यहां सीखा है, हर चीज हमने यहां सीखी है। हम क्यों नहीं धर्म सीखना चाहते हैं? क्योंकि धर्म तो हमने फालतू लोगों के काम समझ लिया, ये तो रिटायर्ड लोगों का काम है धर्म करना। तो हमारे पास तो बहुत सारे काम है, धर्म कौन करे? कई कई लोग तो ऐसा कह देते हैं, जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म। सुना आपने ऐसा? तो हम कहते हैं भैया बहुत अच्छा है, आप यदि हमारे लिए ये भावना भाते हैं तो ये तो हमारे लिए वेल विश है, ये बहुत अच्छी कामना है। हम तो चाहते ही हैं, धर्म करते ही इसलिए कि हमारे फूटे कर्म। अरे कर्म ही तो फोड़ना है, कर्मों का ही तो नाश करना है, कर्मों का ही तो अभाव करना है, यही तो चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं? कर्मों का सब खेल जग में हो रहा, कोई बैठा हंस रहा कोई रो रहा, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। ये सारा जितना नाटक दिखाई देता है, ये सारा का सारा नाटक कर्म के उदय का नाटक है। उदय बदलते हुए देर नहीं लगती है, इस कर्म के उदय को प्राप्त करके, थोड़े से पुण्य के उदय को प्राप्त करके अभिमान मत करना, गर्व मत करना, क्योंकि ये पुण्य कर्म का उदय कब पाप कर्म के उदय में बदल जाएगा पता नहीं लगेगा। भरा पूरा परिवार कुछ दिनों में खत्म होता हुआ देखा जाता है, हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है। किसने देखा कल क्या होगा, किसने देखा हमारे आयु कर्म की क्या व्यवस्था है, आगे कितना आयु कर्म शेष है हमारे पास में, कितने आयु कर्म का बैलेंस है हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते उसके बारे में। कौन इस बात की गारंटी ले सकता है कि मैं इतने लंबे समय तक जिंदा रहूंगा? कह सकता है कोई व्यक्ति कि साहब इतना टाइम तो है हमारे पास में? आपके पास में नहीं है टाइम, बिल्कुल नहीं है आपके पास में टाइम, क्योंकि हो सकता है कल हमारा दिन पूरा हो जाए, हो सकता है आज हमारा टाइम पूरा हो जाए। इसलिए जब तक मौत नहीं आ जाती, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती, जब तक मृत्यु रूपी शिकारी हमारा शिकार नहीं कर लेता, तब तक हमारे को सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहो, क्या पता मौत बुढ़ापे में आती है। महेंद्र भाई कितना समय है अभी आपके पास में? ये है पंडित जी अभी तो 10-5 साल, तो 10-15 साल तो अभी तो कितना है बस, कितना टाइम और है? 50-60-70 वर्ष हमने बिता दिए हैं, वो तो सच है, देखते हैं वो तो, इतना टाइम तो हमारा बीत गया, लेकिन अब आगे कितना टाइम हमारे पास में और है कौन जानता है? कल का भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कि हम यहाँ अमेरिका में आए हैं, यहाँ मियामी में प्रवचन करते हैं, यहाँ से हम इंडिया पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कि कोई गारंटी नहीं है। कितने लोगों की दुर्घटनाएं होती है। अभी हमारे वहां उसमें नदी में बह गए, घूमने के लिए आए थे, 28 बालक थे घूमने के लिए आए थे और फोटो खिंचा रहे थे नदी के बीच में, और एकदम पानी का बहाव तेज आया, 28 में से 24 बालक बह गए, यंग लड़के खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा 24 में से। और कितनी देर में, कि मुश्किल से 28-30 सेकंड के अंदर, 28-30 सेकंड में एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। किसके जीवन का ठिकाना है कि कर्म नहीं छोड़ेंगे आपको, कुछ तो साथ में जाता होगा, कोई चीज साथ में जाती है कि नहीं, अगले जन्म में अगले भाव में कर्म साथ में जाते हैं। पैसा साथ में नहीं जाएगा, मकान साथ में नहीं जाएगा, परिवार साथ में नहीं जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा बांधे गए कर्म, जो हमने हमारे परिणामों से बांधे थे, जो हमने अच्छे बुरे भाव किए थे उससे जो कर्म बंधे थे ना, वे कर्म हमारे साथ में जाएंगे और उसका फल मिलेगा। किसके लिए कर रहे हैं ये उठापटक, समझ में नहीं आता है। किसके लिए हो रही है ये भागदौड़, किसके लिए इतनी मेहनत है, किसके लिए इतनी मगजमारी करते रहते हैं हम, दिन रात कमाने कमाने में लगे रहते हैं, भोगने की तो फुर्सत ही नहीं है हमारे पास में। एक रिसर्च के मुताबिक एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जितना पैसा कमाता है, सिर्फ उसका 30% पैसा ही वो उपभोग कर पाता है, 70% तो छोड़ के ही जाता है। रिसर्च हुई है, आप देख लीजिए, आप 70% छोड़ के जाने के लिए भागदौड़ में लगे हैं, हम तो 30% वाले हैं। तो काम चलता है। यदि आपके पास में 2 टाइम रोटी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, आपके पास में सर्व प्रकार की अनुकूलताएं वर्तमान में मौजूद है, तो आपको अपना जीवन धर्म मार्ग में लगा देना चाहिए। धर्म ही एकमात्र शरणभूत है, इसके अलावा कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं दे सकता है। मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के घर में जवान बच्चे की मौत हो जाए, उस व्यक्ति को कितना पैसा ला करके दिया जाए कि वो सुखी हो जाए, बोलो। जीवन भर पैसे पैसे के लिए दौड़ते रहते थे, आज 20 साल का बेटा मर गया, बोलो आप कर सकते हैं उसके लिए कोई सुखी होने का कोई उपाय है आपके पास में, कोई ऑप्शन है कैसे सुखी हो सकते हैं? कहता रहता है पंडित जी, अपने लिए तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। बच्चों के नाम पर अपने राग का पोषण करता है, बच्चों के नाम पर अपने मोह का पोषण करता है, अपने मिथ्यात्म का पोषण करता है, अपने के स्वयं के विषय कषाय का पोषण करता है और नाम लगाता है बच्चों का, बच्चों के लिए करना पड़ता है। आप किस लिए कमा रहे हैं? अपने, मुझे तो क्या करना है, अपनी तो जैसे तैसे बीत गई, अपनी तो गुजर रही है, गुजर गई और थोड़ी बहुत बची है, अपने लिए क्या करना है, लेकिन करना पड़ता है भाई उनके लिए, क्या करें। सच में उन्हीं के लिए कर रहे हो आप, सच सच बताना, उन्हीं के लिए कर रहे हो ना? देखो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, अभी तो 21वीं सदी चल रही है, और यदि ये टाइम पीरियड जिस तेजी से बदल रहा है, क्योंकि आज यदि आप 20 साल पुरानी बात यदि देखते हैं, 30 साल पहले की बात देखते हैं, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, नहीं आज कितना बदल गया, आज फेस टू फेस बात होती है, आज कैसे किस तरह से विकास हो रहा है। आपके डोरेमोन वगैरह चलता है, कभी देखते हैं बच्चे लोग, देखते होंगे सीरियल आते हैं डोरेमोन वगैरह, और ऐसा उसमें आगे की शताब्दियों की चर्चा करते हैं वो लोग, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, ऐसे नए नए गैजेट्स बतलाते हैं जिसमें आप मोबाइल में बैठो यहाँ से और वो दूसरे सिटी में निकल जाओ, ऐसा हो जाता है। ऐसा देखते हैं प्रवेश भाई, सही कह रहा हूँ, बच्चे देखते होंगे घर में मोहित भाई, हाँ इस तरह की चीजें बहुत सारी आती है। हो सकता आज के 100 साल पहले यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहता कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से मैं फेस टू फेस बात कर सकता हूँ, वो मुझे देख सकता है, तो पागल हो गया, ऐसा कैसे देख लेगा, यही कहते हैं ना। आज हम फेस टाइम पे बात करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं, लैपटॉप पे अपन देखते हैं, सामने बैठ करके बात हो रही है, ये कैसे हो रहा है ये। कदाचित ऐसा हो गया क्या कि आपके पास में यहां से अगले भाव में ले जाने की कुछ फैसिलिटी हो गई, क्या आप यहाँ से आप जो भी आपने कमाया है वो आप अगले जन्म में ले जा सकते हैं। सब सच अपने हृदय पर हाथ रख करके बतलाना, जो अभी आप कह रहे थे कि हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, कितना छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए? क्या बात करते हो पंडित जी, फूटी कोड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे एक पैसा नहीं छोड़ करके जाएंगे। तो कह तो रहे थे आप, अरे वो तो इसलिए कह रहे थे कि ले जाने की व्यवस्था नहीं है तो क्या कहे, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी आसक्ति घटती नहीं है, कौन भोगेगा इन कर्मों को अगले जन्म में? सिरियंश बन जाएगा, ढोर बन जाएगा, पशु बन जाएगा, गाय भैंस बन जाएगा, भेड़े बनेगा और लकड़ी मार करके चराएंगे, बंदर बन करके अपने ही घर में आ जाएगा तो लकड़ी मार करके भगाएगा अपना ही बेटा, बोलो। हाँ कीड़ा बन गया, निश्चा में कीड़ा बन गया, बोलो। कौन करे, कौन संभालेगा, कौन संभाल सकता है? अपने को ही संभालना पड़ेगा, कोई संभालने वाला नहीं है, अपने द्वारा बांधे हुए कर्म है, अपन ही भोगेंगे, अकेले कोई भोगना पड़ेगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना बेटा काम आएगा, ना पत्नी आएगी। बोलो क्या क्या काम आएंगे? मतलब सद्दाम हुसैन की फांसी हुई थी ना, लाइव दिखाई गई थी वो, तो देखी थी आप लोगों ने, जब उसके खजाने खुले, जब उसके मकान की तलाशी ली गई, ऐसे ऐसे वॉश बेसिन निकले जो गोल्ड के थे, हीरे जड़े हुए थे उनके अंदर नलों में, उसके सामने जो मिरर लगे हुए थे, चारों तरफ ऐसे डायमंड लगे हुए, क्या गजब वैभव था। तो जब वॉश बेसिन में नल खोल करके मुंह धोता होगा तो कितने डायमंड आते होंगे? पानी से धोता होगा कि डायमंड से धोता होगा? क्या काम आएगा बोलो? उसके प्रति जो मोह और लगाव है ना, उससे बांधे हुए कर्म कहां जाकर के भोगेगा? जाकर के जवाब देना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सोच लीजिए, यदि आप वर्तमान में नहीं सोचेंगे, वर्तमान में विचार नहीं करेंगे, अभी यदि हमारा चिंतन नहीं चलेगा इस दिशा में तो कब चलेगा? पांव तो कब्र में लटक रहे हैं, पल भर का तो ठिकाना नहीं है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती है, कोई चीज आज लाइफ कितनी कठिन हो गई है, क्या पता कौन से क्षण हमारा घर में बैठे बैठे, क्योंकि बिना लाइट के काम नहीं चलता है, एक झटका लगता है, करंट लगता है, खत्म हो जाता है व्यक्ति, हड्डियां इतनी कमजोर हो गई है कि एक पैर फिसलता है और कांच की जैसी तो हड्डियां हो गई है, फ्रैक्चर हो जाता है। आप किस बात का अभिमान कर रहे हैं? ना आंखें हमारे हिसाब से चलती है, ना कान हमारे हिसाब से चलते हैं, ना शरीर हमारे हिसाब से चलता है, कुछ भी तो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, और चलाना चाहते हैं पूरी दुनिया पर, परिवार पर, घर पर, सब हमारे हिसाब से चले। ये सारे के सारे संयोग हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ये कर्म के हिसाब से चल रहे हैं, ये कर्म के नौकर में है। ज्ञानवर्णी कर्म के हिसाब से व्यवस्थाएं मिली है, आपका ज्ञान कितनी बुद्धि है, हिसाब समझ में नहीं आता कि ज्ञानवर्णी कर्म का तीव्र उदय है इसलिए समझ में नहीं आता, ज्ञानवर्णी कर्म का मंद उदय होगा तो समझ में आएगा। याददाश्त कम है, स्मरण शक्ति कम है, कल मैंने उपाय बतलाया था स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं आप, आपकी मेमोरी पावर कैसे बढ़ सकती है। मोहित भाई क्या करें अपन, कितने बादाम खाएं बोलो कि हमारी याददाश्त बढ़ जाए? बादाम खाने से याददाश्त नहीं बढ़ती, सच में नहीं बढ़ती। एक व्यक्ति की याददाश्त चले गई, मान लीजिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि अब इसकी तो स्मृति चले गई है और अब तो धीरे धीरे क्या पता, आप देखिए देखते हैं भविष्य में क्या होगा, उस व्यक्ति को कितने बादाम खिलाए जाएं कि उसको पुरानी बातें वापस याद आ जाए, आ जाएगी। कोई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऐसा कि इनको बादाम खिलाओ? नहीं, तो हमने समझ लिया ऐसा कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है। पहले ये बताओ याददाश्त कम क्यों हुई थी, पहले ये बताओ याददाश्त चले क्यों गई थी? ज्ञानावरणी कर्म की वजह से, ज्ञानावरणी कर्म बांधा था, हमने ज्ञानियों की विराजना की थी, हमने ज्ञान की विराजना की थी, हमने पढ़ने वाले का निषेध किया था। आपको पता नहीं है आपके इन विचारों से आप कैसे कर्म बांध रहे हैं। कर्म बंधते हुए दिखते नहीं है, जब फल मिलता है तब आंख से आंसू बहते हैं, बंधते हुए दिखाई नहीं दे रहे हमारे को। टीवी के सामने बैठ करके हम कर्म बांधते रहते हैं, घर में बैठ करके हम कर्म बांधते रहते हैं, रोजाना दूसरों की निंदा करके, अपमान करके, तिरस्कार करके, ज्ञानियों की निंदा करके, ज्ञानियों का अपमान करके, शास्त्र स्वाध्याय का अपमान करके, स्वाध्याय नहीं करके गीता की जिनेन्द्र देव का हम अपमान करते हुए कर्म बांधते रहते हैं निरंतर। ज्ञान की विराधना की, शास्त्रों की विराधना की, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने वालों की निंदा की हमने, पढ़ने वालों का अपमान किया हमने। हमने कहा अरे ये क्या पढ़ते हो आप, बेकार की चीजें, ये पढ़ो आप न्यूज़पेपर, तो उससे कितना भला हो जाएगा हमारा? कुछ भला नहीं होगा, कुछ भला नहीं होगा। मैं कहता हूं अपनी लाइफ का 90% टाइम हम लोग ऐसे जगह पर स्पेंड करते हैं जिससे हमारे लौकिक जीवन का भी कुछ संबंध नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, वापस ध्यान से सुनिए क्या कह गया। 90% टाइम हमारा ऐसी जगह पर बीत रहा है जिससे हमारे पारलौकिक जीवन का संबंध तो है ही नहीं, आत्मा परमात्मा धर्म का संबंध तो है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हमारी इस लाइफ का भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसे बीत रहा है हमारा टाइम। कहां बिता रहे हैं हम? टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, इधर उधर की चर्चाएं करने में, बिजनेस की चर्चा करने में, राजनीति की चर्चा करने में, स्पोर्ट्स की, गेम्स की, इसकी उसकी, उससे क्या होगा, कौन जीता और कौन हारा, किसको कितने वोट मिले, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी सरकार बनेगी, लेना देना है। अच्छा उससे हमारे घर में रोटी बनेगी, उससे हमारी घर की व्यवस्थाएं होगी, टीवी सीरियल में देखते हुए किसके साथ में क्या हो रहा है और कौन किसका किसके साथ में लड़ाई चल रही है, किसका किससे झगड़ा हो रहा है, कौन किसके साथ में भाग गया और किसको क्या हो गया, क्या है इस राग द्वेष के अलावा? व्यर्थ के राग द्वेष, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं है। और 90% टाइम इसमें जा रहा है। मैं कह रहा हूं उसका थोड़ा बहुत भी हिस्सा यदि आप लौकिक जीवन में भी लगाएं तो लौकिक जीवन में उन्नति हुए बिना नहीं रहेगी। और उसका यदि शतांश भी आप यदि पारलौकिक जीवन के लिए यदि आप लगाएं तो आत्म कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा आपका। आप लगाएं तो सही, हम किसी और के लिए टाइम देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपके लिए कह रहे हैं, अपने आप के लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। बच्चों के लिए तो बहुत किया, परिवार के लिए बहुत किया, समाज के लिए बहुत किया, अपने आप के लिए आपने क्या किया, क्या किया आपने अपने आप के लिए? कुछ नहीं किया, निकल गई जिंदगी यही। और फिर क्या होगा, हम यदि नरक में जाएंगे तो बच्चा आएगा ना संभालने के लिए, अरे पापा आप बहुत तकलीफ में हो, आपने बहुत कमाया था मेरे लिए, आएगा वहां सहयोग करने के लिए? कोई नहीं आएगा। नरक में जाएंगे तो अकेले भोगना पड़ेगा, त्रियंश में जाएगा तो अकेले भोगना पड़ेगा, जहां जाएगा यहां भी अकेले ही भोग रहा है। अच्छा बोलो, हम लोग यहाँ साथ में बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, कितने लोग, काफी लोग हैं इस पूरे हॉल में, जितने लोग हैं सब लोग साथ में सुन रहे हैं ना, क्या सब सब साथ में सुन रहे हैं, क्या चीज साथ में है जी बताओ? आप बगल वाले के कान से सुन रहे हो, आप दूसरे की आंख से देख रहे हो, आप जो बैठे हो आपके कमर का दर्द आप फील कर रहे हैं ना, आपके घुटनों का दर्द आप महसूस कर रहे हैं ना, क्या साथ में है मतलब? परिवार में साथ में, हम साथ साथ में यात्रा करने के लिए चल रहे हैं, तो साथ साथ में यात्रा करने के लिए चल रहे हैं तो थोड़ी देर मैं थक जाता हूं तो दूसरे के पैर से चल लेता हूँ, साथ साथ में कर रहे हैं ना हम लोग, अकेले अकेले हैं भाई साहब, कहां है साथ? मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरों का सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बेदनी कर्म में आगे चर्चा करेंगे, परोपकार की बात करेंगे, दूसरों का सहयोग करने की बात करेंगे, लेकिन तू भी अपने पैरों से चलता है, अपने मुख से खाता है, अपने पेट में खाता है, अपनी आंख से देखता है, अपने कान से सुनता है, अपने हाथों से काम करता है, अपने सुख दुख को खुद भोगता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? सबका इंडिविजुअल अपना अपना कर्म है जिसका उपभोग खुद कर रहा है, कितना सरल है ये कर्म सिद्धांत, वही तो समझा रहे हैं हम। आप अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए विराधना से बचें, आराधना में लगे। विराधना का फल है ये संसार दशा। एक ज्ञानी की विराधना अनंत ज्ञानियों की विराधना है। एक ज्ञानी की विराधना में, एक ज्ञानी की विराधना में तीर्थंकरों की विराधना है, अनंत केवलियों की विराधना है, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की विराधना है, जो भी तीर्थंकरों की विराधना है। हमारे को पता ही नहीं हम किसकी विराधना कर रहे हैं। दर्शन मोहिनी कर्म बंधता है उसे। ये मोहिनी कर्म बहुत खतरनाक है। संसार में रुले हैं हम इस मोहिनी कर्म के कारण। कैसा है ये मोहिनी कर्म, किस प्रकार का है मोहिनी कर्म का स्वरूप, मोहिनी कर्म क्या चीज है ये। कल हमने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की चर्चा की थी ना। एक कर्म है मोहिनी नाम का कर्म, दो भेद है इस मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व, दर्शन मोहिनी माने इसको गलत फहमी, भ्रम धोखे में है। दर्शन मोहिनी माने मिसअंडरस्टैंडिंग, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, कुछ का कुछ समझ रहा है, किस गलत फहमी में जी रहे हैं हम। कर रहे हैं हम शरीर के लिए और समझ रहे हैं आत्मा के लिए। कर रहे हैं पड़ोसी का काम और समझ रहे हैं काम हो रहा है अपना। ये दर्शन मोहिनी है, ये मिथ्यात्व है। हम यहाँ दर्शन मोहिनी की चर्चा करने वाले हैं। अभी क्यों बनता है दर्शन मोहिनी कर्म, ये कैसा है मिथ्यात्व कर्म। ये वो मिथ्यात्व कर्म है जिस मिथ्यात्व कर्म के कारण हमने दुनिया देखी है, संसार में घूमे हैं, चारों गतियों में भटके हैं, नरक निगोद में गए हैं, दर दर की ठोकरें खाई है। मनुष्य त्रियंश देवनार की चारों गतियों में यदि हम किसी वजह से गए हैं तो उस कर्म का नाम है मिथ्यात्व, उसका नाम है दर्शन मोहिनी कर्म। आपको भटकना है संसार में, आप भटकना चाहते हैं। हम तो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, हम कहाँ भटकना चाहते हैं। भटकना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन काम भटकने के करता है। बोलो, दुखी कोई नहीं होना चाहता, लेकिन काम दुखी होने के करता है। रोना कोई नहीं चाहता, लेकिन काम रोने के करता है। समलो भैया, समलने के लिए मिला है हमारे को मनुष्य जीवन। आपको पता है, पता है जब हम नरक में थे, त्रियंच में थे, जब हम गर्भ में थे, हम निरंतर ऐसी भावना बाते थे, हे प्रभु कोई हमारे को यहाँ से निकाल दे, हे भगवान मैं यहाँ से निकल जाऊं बस, फिर ऐसा काम नहीं करूंगा कि दोबारा यहाँ आना पड़े, फिर दोबारा यहाँ आने का काम नहीं होगा। और फिर जब हम बाहर निकल गए, हम मोह माया में मस्त हो गए, हम दुनियादारी में मस्त हो गए, हम खाने पीने घूमने फिरने में मस्त हो गए, हमें लगने लगा कि बस यही सार है, इसमें ही सुख है। ये जो विषयों में आपको सुख दिखाई दे रहा है, ये जो परद्रव्यों में आपको सुख दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, मिथ्यात्म माने गलत फहमी, मिथ्यात्म माने जैसा स्वरूप नहीं है वैसा समझना। कैसा स्वरूप नहीं है, कि इसमें सुख नहीं है और मैं समझ रहा हूं कि इसमें सुख है, यही तो मिथ्यात्म है। कितना सुख मिलता है बोलो। अभी हमने बात कही थी जवान बेटे के मरने की, पत्नी के हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे चल रही है, बोलो क्या करें सुखी होने के लिए। ऐसा चाहिए, क्या पसंद है आपको, कौन सी मिठाई बनाए खाने में, क्यों मिठाई पसंद नहीं है, इडली सांभर पसंद है, डोसा बनाए, दाल बाटी, क्या पसंद है, क्या खाना चाहेंगे आप। अरे पंडित जी छोड़ो अभी खाने पीने की बातें, अभी तो देखो आप कैसा लगता है हमारे को। माने ये खाने पीने की चीजें हमारे को सुखी नहीं कर सकती, ये सुखी करने में समर्थ नहीं है। कितना पैसा आपको दिया जाए कि हमारे बच्चे की मौत का दुख कम हो जाए, हीरे जवाहरात सोने के पलने में जलाएं हमारे को, सोने की थाली में भोजन कराएं, कितना खुश होंगे। कैसी प्लानिंग करें बोलो, वर्ल्ड टूर के लिए आपको टिकट कटा करके दे दें, वेकेशन पे भेज दें आपको एक महीने के लिए, कितने सुखी हो जाएंगे। सुख लगता ही नहीं है उसको, आसार लगने लगता है, दुनिया आसार लगने लगती है, बिजनेस आसार लगने लगता है, जिससे बीतती है उसे पता लगता है। किसी से भी बीत सकती है ना, कि कोई कुछ नहीं है कि सब उनका तो बेटा मर गया हमारा नहीं मर सकता है, ऐसा होगा? वो तो जवान मर गए थे, हम थोड़ी ना मरेंगे जवानी में, हम तो 90 साल के होकर के मरेंगे, हम तो 100 साल के होकर के मरेंगे। कि तेरा बस चले तो 1000 साल का हो ना, सड़ सड़ के मरना हो तो हमारा क्या बिगड़ता है, लेकिन तो जी पाएगा, तेरा कंट्रोल चलता है उससे, आयु कर्म पे हमारा कंट्रोल चलता है। आप कौन सी आयु की सोच रहे हैं, अगले क्षण खत्म, ये गलत फहमी है। ये सर वस्तुओं में सुख मानना ये गलत फहमी है, इससे दर्शन मोहनी कर्म बन रहा है। दर्शन मोहनी कर्म कैसे बंधता है उसके कारण की चर्चा करते हुए उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ, किसी का भी लिखा हुआ, कहीं से भी छपा हुआ, किसी भी संस्था से प्रकाशित हुआ हो, दिगंबर हो चाहे श्वेतंबर हो चाहे स्थानकवासी हो, कोई संस्था हो, किसी भी जगह से प्रकाशित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 6वें अध्याय में दर्शन मोहनी कर्म के बंधन के कारण की चर्चा पढ़ करके देखना। किसी एक पक्ष की बात नहीं करता हूँ, उमा स्वामी आचार्य दिगंबर श्वेतंबरों के ऐसे ऐसे नहीं थे कि हम तो इनके हैं और हम इनके नहीं हैं। ये कहते हैं केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, अवर्णवाद, अवर्णवाद की चर्चा की उन्होंने, दर्शन मोहनी कर्म बंधन के पीछे उन्होंने अवर्णवाद बतलाया। आप जो तकलीफ भोग रहे हैं इसके पीछे दर्शन मोहनी कर्म कारण है, और दर्शन मोहनी कर्म क्यों बांधा था, क्यों बांधा था दर्शन मोहनी कर्म, कि केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवाद, अवर्णवाद किया उनका, अपमान किया उनका, विराधना की उनकी, ये विराधना का फल है जो भोगना पड़ेगा। केवलियों का अवर्णवाद किया हमने, कैसे अवर्णवाद करते हैं हम, हमें तो खबर ही नहीं है कैसे अपमान हो जाता है। अच्छा बतलाइए मेरे को, अभी आपके यहाँ ओबामा जी आए, मान लीजिए यहाँ के राष्ट्रपति वो यहाँ आए, तो वो जब यहाँ आएंगे तो वो तो यहाँ खड़े हो क्या, और आप उनके सामने आपस में इधर उधर बातें करते रहेंगे, ऐसा अलर्ट खड़ा होता है उनके सामने, क्या मजाल जो उनके सामने इधर उधर कोई दूसरे काम करने लगे। हाँ वो आए होंगे, हाँ कोई बात नहीं, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, मैं भी बिजी हूँ, ऐसा अपमान कर सकते हैं आप उनका, नहीं कर सकते हैं। केवलियों का अपमान करते हैं, सामने भगवान बैठे हुए हैं, वेदी में भगवान विराजमान हैं, और हम करते हैं उनके सामने अपने घर की बातें। बोलो ये जो है ना जैन सेंटर, ये पूरा का पूरा जैन सेंटर ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, या मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूँ भाई, जैसा देखता हूँ, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए वो वहां पर। अरे भैया इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से बाहर निकल करके भी बात कर सकते हैं, आप साइड में आकर के भी बात कर सकते हैं, सामने तीन लोग के नाथ बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, आपको उनकी गरिमा का पता है? सच कहूं मैं आपको, बुरा तो लगेगा, हम उन्हें भगवान मानते ही नहीं है, हम उन्हें पत्थर समझते हैं, हम ये समझते हैं भगवान देख थोड़े ना, अरे इनको क्या पता लगता है अपन क्या बात कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं ऐसा कि ये भगवान है, आपको ऐसा एहसास होता है कि हम भगवान के सामने खड़े हैं? कि नहीं नहीं पंडित जी भगवान थोड़ी ना, ये तो प्रतिमा है भगवान की, मूर्ति है ये तो। हम हमारे पिताजी की फोटो का अपमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये भगवान है भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा किए हमने इस प्रतिमा में, ये प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर के विराजमान हुई है, आप इसको पाषाण नहीं कह सकते, ये भगवान है, ये प्रतिमाएं हमारे को उपदेश दे रही है, ये प्रतिमाएं मौन उपदेश देती है, हमारे को सीखना पड़ेगा, हमारे को समझना पड़ेगा ये भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की आंखें क्या कह रही है, भगवान के हाथ क्या कह रहे हैं। बोलो, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं भगवान, कुछ न कुछ तो उपदेश दे रहे होंगे, कोई ना कोई तो संदेश होगा ना हमारे भगवान का। क्यों है हाथ पे हाथ धर करके प्रतिमा, क्यों नहीं है अस्त्र शस्त्र साथ में भगवान के, बोलो कितना अच्छा होता थोड़े बहुत। और आजकल तो जमाना बदल गया है, वो धनुष बाण की जगह बंदूक रखो नहीं, राग द्वेष का प्रतीक है हमारे भगवान। किसी जैन मंदिर में चले जाना, भगवान न आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं और न किसी के ऊपर संकट करते हुए दिखाई देते हैं। शांत मुद्रा होती है भगवान की, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, कुछ नहीं करते। ये सबसे पहला सिद्धांत है ये जैन दर्शन का कि केवलियों का वर्णवाद है। यदि आप केवली को कर्ता मानते हैं तो, यदि आप ये मानते हैं कि भगवान हमारा भला कर देंगे तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, काम नहीं चलेगा। समझते हैं सब ऐसा, 90% जैन ऐसा समझते हैं। यहाँ जैन सेंटर में समझते हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, देखता हूं ना घर में परिवार में सब लोग, इंसान तो सब एक जैसे होते हैं ना, हमारे मामा जी नाना जी फूफा जी बुआ जी चाचा जी ताऊ जी सब कोई ना सब लोग मंदिर क्यों जाते हो, भगवान भला करेंगे इसलिए जाते हैं। क्या भला करेंगे साहब आपका भगवान, सब सच बताना भगवान क्या भला कर, आप दर्शन मोहनी कर्म बांध रहे हैं, पता है आपको, आप क्या मांगेंगे भगवान से। आप कल्पना करें भगवान महावीर स्वामी अभी सामने प्रकट हो जाएं, आप भगवान से डिमांड रख रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी सामने प्रकट हो जाएं, सामने आ गए, आप क्या मांग रहे थे भगवान से, भगवान थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए। हाँ बस क्या मांग रहे थे भगवान से, हे भगवान थोड़ा सा बस इतना सा मकान है वहां, एक मकान अपना घर का हो जाए, एक बंगला चाहिए अपने को, ऐसा यहाँ अच्छा हो, इस जगह पर हो, कितना अच्छा रहे बोलो, सी फेसिंग वहां पर मिले, यहाँ हो। आप क्या मांग रहे हैं भगवान से, और भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान कहेंगे अरे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, कि क्यों प्रभु क्या गलती हो गई, यही सिखाया था मैंने तेरे को 30 साल तक। भगवान महावीर स्वामी सबको पता है 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया था, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, 12 वर्ष तपश्चरण किया, 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और 42 वर्ष से लेकर 72 वर्ष की उम्र तक 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी ये उपदेश दे रहे होंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं सही कहता हूँ, बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं यही सिखाया होगा ना उन्होंने, ये नहीं सिखाया था उन्होंने तो 30 साल तक कौन जाता होगा उनके पास में सुनने के लिए।
आपने हमें शांति पाई है जैसे,
हाँ वो मार्ग बतलाया भगवान महावीर स्वामी 30 साल तक समव चरण में बैठ करके भोग की चर्चा नहीं करते थे, त्याग की चर्चा करते थे, संयम की चर्चा करते थे, वैराग्य की चर्चा करते थे, साधना की चर्चा करते थे, मनुष्य जन्म को कैसे सफल किया जा सकता है, आप सुखी कैसे हो सकते हैं ये चर्चा करते थे। उन्होंने सुखी होने के नाम पर ये नहीं बतलाया कि आप इतने डॉलर कमा लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, बेटा इस माला का जाप कर, इस माला का जाप करेगा तो इससे तेरे घर में शांति रहेगी और फिर तो सुखी होगा। मेरे जैसा सिर फिराए उनसे पूछ ले कि महाराज आप इस माला के जाप से कह रहे हो घर में शांति मिलेगी, आपने घर का ही को छोड़ा था, आप भी घर में शांति कर लेते तो कहेंगे भैया घर में तो शांति नहीं है, तो हमें काय को बेवकूफ बनाते हो, इस माला का जाप करो घर में शांति रहेगी। बोलो कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं ये बात, आप क्यों नहीं विचार करते हो, पता नहीं क्यों समझदार लोग होकर के पढ़े लिखे होकर के हम लोग इतने तर्कशील हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि आप जैसे ऑडियंस इंडिया में होती होगी, आप कितने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, उसके बावजूद आप कैसे अंधभक्त हो गए हैं, कैसे अंधविश्वासी हो गए हैं। हम इसलिए भगवान के पास में आएंगे भगवान हमारा भला करेंगे, नहीं करते हैं भगवान भला। दर्शन मोहनी कर्म के बंधन का कारण बतला रहा हूँ आपको, सत्वार सूत्र की बात कह रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं है, उमा स्वामी आचार्य की बात कह रहा हूँ, 2000 वर्ष पहले लिखी है, कोई आकर के कड़क शब्दों में बतलाएगा नहीं आपको, सब यही बतलाएंगे हमारे पास में आओ एक मंत्र बतलाएंगे आपका कल्याण हो जाएगा, आओ जय हो महाराज आपकी। हम भी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, दो चार मंत्र बतलाएंगे, शांति मंत्र, घर में शांति कैसे रह सकती है, आपके घुटनों का दर्द अभी ठीक करने का मैं उपाय बतलाऊं तो लाइन लगा करके आएंगे लोग मेरे पास में, बोलो। लेकिन मैं सच्ची बात बतलाता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार ये तो आप समझ जा रहे हैं भाई, क्या करेंगे बतलाओ भगवान, और क्यों करेंगे, और भगवान को क्या यही काम बचा है। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाएं, आप अध्यक्ष हो जाएं, आपको अच्छे से अच्छा पूरे सोसाइटी के अंदर आपको नंबर वन सबसे टॉप पोस्ट आपको मिल जाए, आप लोग चाहते हैं कि नहीं। लेकिन पता है आपको हर व्यक्ति के घर में जाकर के सफाई करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसा पोस्ट किसको चाहिए। सबसे बड़ी पोस्ट का अर्थ यह है कि घर घर में जाकर के सफाई करेगा, सबसे बड़ी पोस्ट का अर्थ यह है कि सबके संकट दूर करेगा, सबके घर में जाकर रोटी बनाएगा, ये है उसका अर्थ। उस पोस्ट की गरिमा तो देखो आप, जो भगवान है वे एक एक व्यक्ति के घर में आकर के उसके दुख दर्द मिटाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, आप दुखी क्यों हैं? भगवान आपको दुखी नहीं करते, भगवान आपको सुखी नहीं करते हैं। ये जैन दर्शन कर्म फिलॉसफी की बात कहता है, भगवान भला बुरा नहीं करते, हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, हम कर्मों को जीत करके स्वयं भगवान बन सकते हैं। दुनिया के सब दर्शनों में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है, एकमात्र दर्शन ऐसा है जो अकर्तावाद की चर्चा करता है। दुनिया के सब दर्शनों में मैं कहता हूं आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में, मियामी में जो यूनिवर्सिटी है फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आप जाएं और किसी फिलोसफी के प्रोफेसर से आप पूछें, बात करें कि जैन दर्शन और अदर रिलीजन में क्या फर्क है, तो मेन अंतर ये होगा कि जैन दर्शन में भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, यदि शर्मा जी से पूछना आप वो बता देंगे आपको, जैनी नहीं समझते। कोई एक मॉमडन प्रोफेसर हो ना फिलोसफी के प्रोफेसर और उनसे पूछो जैन सिद्धांत बतलाओ हमारे को, जैन फिलोसफी के बारे में बतलाओ, तो मुस्लिम जो प्रोफेसर होंगे वो ये कहेंगे आपको कि जैन दर्शन जैन संप्रदाय भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानता, बोलो। और जैनियों से पूछो, बोलो, तो क्या कहेंगे, भगवान ही हमारा करने वाले। कौन माने इस बात को कि ये दर्शन मोहिनी कर्म नंदन का कारण है। हम लोग ना तो समझना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, हम बस जो चल रहा है वो चल रहा है, फिर फल भोगेगा क्या करें, हार्ट अटैक हो जाता है, लकवा आ जाता है, बिस्तरों में पड़ा रहता है, ये सब कर्म का ही तो फल है ना भैया, किसने किया बताओ मेरे को, कौन चाहता है, फिर होता है या नहीं ऐसा, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कई लोग ऐसे दिखते हैं जिनके आंखें चली जाती है, कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, क्यों हो गया ऐसा, किसने किया, कौन है ये सब करने वाला, हमारे ही कर्म है, हमने जो पूर्व में कर्म किए थे उनका फल हमारे को भोगने को मिल रहा है, हम भोग रहे हैं, भगवान नहीं दे रहे हैं, वे बैठे बैठे यही काम करेंगे क्या भगवान, हमने राग द्वेष किए, हमने गंदगी फैलाई, हमारा मिथ्यात्व, हमारा विकारी परिणाम, हमारे कषाय भाव, ये सब हमारे हैं, हमारे द्वारा किए गए हैं, गंदगी किसकी है, हमारी, और सफाई कौन करेगा, बिल्कुल न्याय तो यही है ना, जो गंदगी करे वो गंदगी साफ करे, जो कचरा करेगा वो कचरा साफ करेगा, कचरा किया हमने, राग द्वेष किया हमने, कषायें की हमने, विकार भाव किया हमने, विकारी भाव हुए हमारे, और हम आए भगवान के पास में कि प्रभु थोड़ी सी सफाई कर दो ना हमारे घर में भी, सब पागल है, लॉजिक से नहीं समझ में आ रही इतनी सी बात। भगवान महावीर स्वामी सामने प्रकट हो जाएंगे तो आकर के यही कहेंगे कि शर्म नहीं आती तेरे को, 30 साल तक मैंने समोशरण में बैठ करके यही सिखाया था तेरे को, भोगों में सुख है तो भोगों की कामना कर रहा है। अरे कम से कम व्यक्ति तो देखता किससे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मांगने की भी अकल नहीं है। कोई व्यक्ति रिश्वत लेने के खिलाफ हो और जीवन भर रिश्वत लेने के खिलाफत में बोलता रहा हो, उपदेश देता रहा हो, और आप अपना काम कराने के लिए उसको रिश्वत देने की बात करें, पागल हो गए? किसको रिश्वत देने की बात कर रहे हो आप? आप जानते नहीं हो ये कौन व्यक्ति है? आप जानते नहीं हो भगवान महावीर स्वामी कौन है? आप किससे मांग रहे हैं? ये केवली का अवर्णवाद, क्या ये केवली का अवर्णवाद है? ये भगवान का अवर्णवाद है। भगवान जैन परंपरा में आकर्षा है, कुछ नहीं करते हैं। पंडित जी एक शंका है हमारे को, यदि आप इस तरह की बातें कहेंगे बताएंगे तो फिर लोग मंदिर क्यों आएंगे? पहले तो लोग मंदिर नहीं आते, अब आप यदि इस तरह की बात कहोगे कि भगवान भला नहीं करते तो फिर और व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा। बोलो, मैं तो समझ रहा हूँ ना आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। यदि ऐसा है तो फिर मंदिर क्यों आएंगे? भाई साहब, हम भक्त बन करके आते हैं, भिखारी बन करके नहीं। हम भगवान के भक्त हैं और भगवान की भक्ति करते हुए यदि हम भोगों की डिमांड रखते हैं तो सच बतलाऊं, हम भगवान के भक्त नहीं, भोगों के भिखारी हैं। हमें भोग चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। हमें यदि ये पता लग गया कि ये कुछ नहीं देता तो हम उसके पास में जाते ही नहीं। हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। क्या हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं यहाँ? भोगों का भक्त है भगवान, मूर्ख नहीं है, समझदार है प्रभु। इतना तो समझदार हम भी हैं। कोई बालक, हमारे छोटे छोटे से घर के बच्चे कभी पूछते नहीं है आपको, कभी याद नहीं करते। आप कोई काम बताओ तो कुछ करते नहीं है, सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। और किसी दिन हमारे घर का वो छोटा सा बच्चा 10 साल का 12 साल का वो आया और दादाजी के पैर छूता है, दादाजी और पानी पिलाऊं आपको, क्या लाऊं बोलो आप, आपके लिए क्या खाएंगे आप? दादाजी भी समझ जाते हैं, बेटा क्या बात है क्या बात है आज, क्या चाहिए तेरे को, तू सीधा सीधा बोल समझ जाते हैं ना अपन, ना समझ नहीं है ना, हम जानते हैं कि रोजाना तो इसको तो मतलब ही नहीं है अपने से कुछ, आज इसको जरूर कुछ न कुछ चाहिए, इसको हमसे कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए आज ये हमारे पास में आकर के हमारे पैर छूता है, हमसे प्यार से बैठा है, हमारे पास में बात करता है, किस लिए? कुछ चाहिए, स्वार्थी है। हम ऐसे तो भगवान के पास में आते नहीं है, और भगवान के पास में आकर के हम आज बहुत भक्ति भाव से, भगवान भी समझते हैं बेटा कुछ न कुछ क्यों आया है, मूर्ख थोड़ी ना है वे, ये सब समझते हैं। और उसका फल भी मिलता है, क्या फल मिलेगा? पाप कर्म का बंधन होगा, पाप बांध रहे हैं हम, क्योंकि जिसमें सुख नहीं है वो चीज मांगी ना हमने भगवान से। ये जैन धर्म भोग का नहीं त्याग का धर्म है। विषयों में सुख नहीं है ये उपदेश देते हैं हमारे परमात्मा, हमारे महात्मा, हमारे त्यागी संयमी संत साधु, वो सब यही तो उपदेश देते हैं। घर गृहस्थी में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, कमाने धमाने में सुख नहीं है, तुम इनकी तरफ दौड़ते रहो, तुम इनकी तरफ भागते रहो, सुख नहीं मिलेगा आपको इनमें। रंच मात्र भी सुख नहीं है, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन में जेब नहीं होती, ले जाने की व्यवस्था नहीं है। आप सोचो कि हम थोड़ा बहुत इकट्ठा करके ले जाएंगे, पर भाव में चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, होता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं। तो फिर क्या करें साहब, ये बताओ आप, उपाय क्या है? अवर्णवाद मत करो, अपमान तो मत करो, कम से कम जो उन्होंने कही है, जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने उपदेश दिया है, आप उसको स्वीकार करो भाई। मौन उपदेश देते हैं हमारे भगवान, बोलते नहीं है कुछ भी, लेकिन उपदेश में कमी रखते नहीं है। हम यहाँ भगवान से मांगने नहीं आते, हम यहाँ भगवान का मौन उपदेश सुनने के लिए आते हैं। भगवान को देखते हैं तो भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है, भगवान को देखते हैं तो त्याग की प्रेरणा मिलती है, भगवान को देखते हैं तो वैराग्य की प्रेरणा मिलती है, संयम की प्रेरणा मिलती है, भगवान को देखते हैं तो उन जैसा बनने की भावना जागृत होती है। इसलिए हम भगवान के चरणों की शरण में आए हैं, भोगों के लिए नहीं। परिवज्यतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, मूल सूत्र है, आर्ष वाक्य है, क्या कहते हैं? परिवज्यतु सामान्यम, सामान्य अंगीकार करो, श्रमण अवस्था अंगीकार करो, साधु अवस्था अंगीकार करो, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। ऐसा संभव नहीं है दो नावों पे सवारी करेंगे, इधर भी और उधर भी, दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे, थोड़ा धर्म भी कर लेवे और ये भी कर लेवे, भोग भी भोग लेवे, नहीं चलता है भाई साहब, दोनों तरफा नहीं चलता है। केवली के अवर्ण वाद से बचे, केवली श्रुत संग धर्म कितनी बातें कही है, इन सबका अवर्णवाद क्या, कौन कहे भगवान को कर्ता धर्ता कहना उनका अवर्णवाद है। सच कहता हूँ, प्रैक्टिकल देखना आप, करके देख लो प्रैक्टिकल, किसी भी सभा में, धार्मिक सभा हो और कोई एक व्यक्ति हाथ में माइक लेकर भगवान के बारे में कह रहा हो कि हे प्रभु आप ही तारणहार हैं, आप ही पार लगाने वाले हैं, आपने हमारे संकटों को दूर किया है, आप नहीं होंगे तो हमारे संकटों को कौन दूर करेगा, आपका यदि हमारे ऊपर उपकार हो तो हमारा भला हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति माइक पर खड़ा होकर के बोल रहा है। 15 मिनट उसने अपना लेक्चर दिया, भाषण दिया, 1000 लोग सभा में सुन रहे थे। मैं आपसे पूछता हूँ, 1000 लोगों को लाइन से खड़ा कीजिए, एक एक व्यक्ति से पूछिए आप, ये व्यक्ति अभी 15 मिनट तक खड़े होकर के भगवान की प्रशंसा कर रहे थे या भगवान का अपमान कर रहे थे? 1000 में से 1000 वोट ऐसे डलेंगे जो ये कहेंगे भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, और मैं हूँ एक अकेला व्यक्ति जो सामने बैठा है आपके, ये कह रहा हूँ कि भगवान का अपमान कर रहा है। आपको लगेगा यार क्या बोलते हो आप, भगवान की तारीफ कर रहे हैं हम, आप अपमान कहते हो इसको, इसे केवली का अवर्णवाद कहते हैं, इसे महावीर स्वामी का अवर्णवाद कहते हैं, आप भगवान महावीर स्वामी से गाड़ी मांग रहे हो, गाड़ी देने वाला कह रहे हो, भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं यार मेरे पास तो कुछ नहीं है तू मेरे से गाड़ी मांग रहा है, भगवान महावीर स्वामी से धन मांग रहे हो आप, धन को देने वाला मांग रहे हो, वो कह रहे हैं मैंने तो सब छोड़ छाड़ करके तुम्हें साधु बना था, अब मेरे को धन देने वाला मांग रहा है, तू कैसा समझ रहा है तू? तो पार्श्वनाथ स्वामी को उपकारी मान रहे हो आप, कि पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर कितने तीर्थ हैं आपको कल्पना नहीं है, अनगिनत तीर्थ है पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर हिंदुस्तान में, क्यों चल रहे हैं वो सब? सब इसीलिए चले हैं कि उन सब के माध्यम से सबको लगता है कि हमारा संकट दूर हो जाएगा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, पारस प्रभु जी पार लगा दो, मझधार में है नैया प्रभु पार लगा देना। कभी कभी ऐसा लगता है हमारे को सर दर्द हुआ और पार्श्वनाथ भगवान को याद करो सर दर्द ठीक हो जाएगा, गजब हो गया, सर दर्द की गोली जितना सस्ता समझ रखा है पार्श्वनाथ भगवान को, जो काम एक सर दर्द मिटाने की गोली से हो सकता है उसके लिए पार्श्वनाथ भगवान को परेशान करेगा सर दर्द ठीक करने के लिए, अवर्णवाद नहीं है तो और क्या है, अपमान नहीं है तो और क्या है, सावधान रहो गलती से अपमान नहीं हो जाए, वो बहुत बड़ी हस्ती है भाई साहब पार्श्वनाथ स्वामी, साधारण नहीं है, ये हमारे सर्वेंट नहीं है, ये हमारे नौकर नहीं है, ये भगवान है, हमने तो उनको नौकर समझ लिया, हम तो जाकर के ऑर्डर देते हैं भगवान को, देखो भगवान ये काम, देखो मैं आपका सच्चा भक्त हूं प्रभु, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, गजब हो गया यार पार्श्वनाथ भगवान भी सोचे ही आया मेरे ऊपर ऑर्डर करने वाला ये ऑर्डर देता है मेरे को ये काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई हम ऑर्डर नहीं देते, मांगते हैं, यहाँ भिखारियों का काम नहीं है, दो तरह के भिखारी होते हैं पता है आपको, भिखारी दो तरह के यहाँ तो नहीं होते, अमेरिका में तो इंडिया में तो दो तरह के भिखारी मिलते हैं, एक भिखारी वो जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है, और दूसरा भिखारी वो जो मंदिर के अंदर आकर के भगवान से भीख मांगता है। मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी उसकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है क्योंकि वो लोअर स्टैंडर्ड का भिखारी है, और अंदर आने वाला जो भिखारी है वो थोड़ा सा गाड़ी में आता है, सूट में आता है, थोड़ा सा अप टू डेट होकर के, वो थोड़ा सा उसकी डिमांड, जिस लेवल का भिखारी उस लेवल की डिमांड। बुरा लगे तो माफ करना भाई, लेकिन बात सच्ची है, सच्ची बात कहता हूं मैं। जानता हूं कई लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन बुरी लगे तो मैं क्या करूं इसमें। मैं आप लोगों को मन रिझाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। मैं आपकी मनपसंद बातें कहने के लिए नहीं आया हूं, इसके लिए तो टीवी बहुत है, मनोरंजन के साधन बहुत है। इसके लिए तो आप बुला लो तारक मेहता को, बुला लो राजू श्रीवास्तव को, बुला लो किसी अच्छे स्पीकर को, बुला लो, बहुत एंटरटेनमेंट करेंगे। मुझे एंटरटेनमेंट नहीं करना, मुझे तो जैन दर्शन समझाना है, मुझे तो जैन फिलॉसफी समझानी है। जिसे अपना कल्याण करना हो वो आए मेरे पास में, और जिसे कल्याण नहीं करना हो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो सच्ची बात बतलाएंगे, अच्छी लगे चाहे नहीं लगे लेकिन सच्ची जरूर होगी, खरी बात कहेंगे। फिर नहीं साहब ऐसी बात कहो ना कि सब लोगों को अच्छी लगे। अच्छी अच्छी के चक्कर में तो मरे जा रहा है, अनंत काल हो गया। मनपसंद बात होनी चाहिए, अच्छी लगने वाली बात होनी चाहिए। श्रुति का वर्ण बात करता है इसी तरह से, देखो हमने कहा ना भगवान के सामने बैठ करके इधर उधर की बातें करे, भगवान का वर्णवाद, ठीक है ना। भगवान की तरफ पीठ दे करके खड़ा हो, भगवान का वर्णवाद। पीठ नहीं देना भगवान को कभी भी, हमारी पीठ नहीं लगनी चाहिए। भगवान के बारे में जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो नहीं समझ करके और कुछ कहना, ये उनका वर्णवाद, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के पास में जो चीज हो वो चीज उससे मांगे वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो चीज जिसके पास में नहीं है वो चीज आप उससे मांगो और आग्रह पूर्वक मांगो तो कहता है यार प्लीज अपमान मत करो मेरा, यार मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास में नहीं है। ये होगा ना महेंद्र भाई, अभी यदि मैं आपसे BMW मांगू तो आप कहोगे प्लीज मेरे पास ही नहीं है। जो चीज मेरे पास है, आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, जो चीज मेरे पास है वो चीज मैं आपको दे सकता हूँ, जो चीज मेरे पास में नहीं है वो चीज मैं आपको नहीं दे सकता। बोलो पूरी दुनिया में यही नियम है ना। मैं आपके पास में आऊं, आपसे कोई चीज मांगू तो जो आपके पास में है ही नहीं आप कैसे देंगे। अब हम गए भगवान के पास में, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, तो भगवान कहते हैं मेरे पास ही नहीं है, तू मेरे से मांग करके अपमान मत कर यार मेरा, प्लीज सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती मत कर, मैं नहीं दे पाऊंगा जो चीज तू मांगेगा क्योंकि वो मेरे पास में नहीं है। तेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तुझे बंगला चाहिए, मेरे पास में बंगला नहीं है। अरे मैंने उस चीज को छोड़ दिया, मेरे पास ही नहीं है, मैं तुझे कहां से दूंगा। एक व्यक्ति मुंबई की चौपाटी पर तरबूज खाने के लिए गया, तरबूज खरीदा उसने और तरबूज को हाथ में लिया, उसमें भारी था, वजन ज्यादा था और एकदम फूट गया, नीचे गिर गया। जैसे ही वहां तरबूज फूटा उसमें से एक जिन्न निकला, समझिए ना, वो प्रकट हो गया सामने और बोला तुमने मुझे मुक्त किया है, आदेश करो क्या हुक्म है मेरे आका, क्या चाहिए तुम्हारे को। हमने कहा यार अच्छा है, तो मांग डिमांड तो जो हमसे पूछ रहा है। तो हमने उससे कहा कि एक काम हो सकता है, मुंबई में नया नया आया हूं, एक अच्छा सा फ्लैट दिला दो। तो पता है क्या बोला, कैसा मूर्ख है, बम्बई में फ्लैट होता तो मैं मथीरे में क्यों रहता। अरे मेरे पास ही नहीं है, तुम मुझसे मांग रहा है। अगर भगवान जिस चीज का त्याग कर चुके हैं, जिसको तुच्छ जान करके त्याग कर चुके हैं, जो उनके पास में नहीं है उस चीज की डिमांड आप उनसे कर रहे हैं, तो फेर नहीं है भाई बात। ये अवर्णवाद, दर्शन मोनी कर्म का आश्रम, श्रुत माने शास्त्र का अवर्णवाद। जो बात शास्त्र में लिखी है उस बात को स्वीकार नहीं करना, शास्त्रों को पढ़ना नहीं, शास्त्रों का अपमान करना, शास्त्र पढ़ते हुए की विराधना करना, ये सब श्रुत का वर्णवाद है, कभी नहीं करना, गलती से भी नहीं होना चाहिए। किसी और से डरो या नहीं डरो, पाप से तो डरो। ये जीव पाप से नहीं डरता है, पाप के फल से डरता है क्या? लेकिन पाप करने से नहीं डरता। घुटनों में दर्द से डरता है, लेकिन घुटनों का दर्द जिस वजह से हुआ है उससे नहीं बचना चाहता। बोलो कैसे काम चलेगा? मंदबुद्धि होने से बचना चाहता है, याददाश्त बढ़ाना चाहता है, लेकिन काम उल्टे करता है। हम कह रहे हैं श्रुत का वर्णवाद नहीं होना चाहिए, जिनवाणी का वर्णवाद नहीं होना चाहिए, परमात्मा का वर्णवाद नहीं होना चाहिए। मुझे याद आता है एक पद्म पुराण का प्रसंग, राम रावण का युद्ध चल रहा था, 6 महीने चला उनका युद्ध। बीच में एक प्रसंग ऐसा बना कि रावण जो था वो तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने में लग गया। कैलाश पर्वत पर शांतिनाथ भगवान के मंदिर में शांतिनाथ भगवान की भक्ति और स्तुति में लगा हुआ था, बहुत भक्ति कर रहा था, विद्या सिद्ध करने में लगा हुआ था भगवान। अब पीछे से लक्ष्मण दौड़ते हुए गए रामचंद्र जी के पास में और उन्होंने कहा कि भाई साहब भ्राता, बहुत अच्छा मौका है, हम रावण को अभी मार सकते हैं। वैसे तो विद्याधर है, अनेक प्रकार की विद्याओं का स्वामी है, बहुत प्रकार की रिद्धियां और शक्तियां हैं, लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है। कि कौन सा मौका? कि अभी वो वहां मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहा है, सारी रिद्धियां, सारे चमत्कार, सारी शक्तियां सब बाहर है, वो अकेला बैठ करके वहां भक्ति कर रहा है। इस समय यदि हम उसके ऊपर प्रहार करेंगे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है हमारे द्वारा चलाया गया तीर शांतिनाथ भगवान के ऊपर लगेगा? लक्ष्मण बड़े विनम्र भाव से बोले, भ्राता, आपको अपने निशाने पर इतना भरोसा नहीं है? मारेंगे हम रावण के और लगेगा भगवान के, ऐसा कैसे होगा? अरे मूर्ख, तुझे इतनी समझ नहीं है, वो भगवान की भक्ति करने के लिए बैठा है, उसके हृदय पे तीर चलाएगा, अभी उसके हृदय में भगवान शांतिनाथ स्वामी विराजमान है। आपको पता है आप जिसका अपमान कर रहे हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं, उसके हृदय में कौन बैठा है? आप तो सोच रहे हैं कि हम सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति यदि स्वाध्याय कर रहा है तो आप उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे, आप भाई साहब का अपमान नहीं कर रहे, आप अपने पिताजी का अपमान नहीं कर रहे, आप अपने किसी मित्र का अपमान नहीं कर रहे हैं, उस मित्र के हृदय में बैठे हुए मुनिराजों का अपमान कर रहे हैं, साधुओं का अपमान कर रहे हैं, उनके हृदय में व्याप्त तीर्थंकरों का अपमान कर रहे हैं। यदि वो व्यक्ति बैठ करके तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर रहा है और आप उसको अपशब्द कहते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो आप उमा स्वामी आचार्य का अपमान कर रहे हैं। आपके द्वारा चलाए गए वाक बाण उमा स्वामी आचार्य को लग रहे हैं। यदि वो व्यक्ति बैठ करके भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर रहा है और हम ये कह रहे हैं बंद करिए, क्या भक्तामर स्तोत्र लगा करके बैठा है यहाँ, काम कर उठ करके दूसरा, आपको पता नहीं है आपके द्वारा लगाई गई झाट वो उस बालक पे नहीं लग रही है, वो मानचंदाचार्य के ऊपर लग रही है। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा है वो, उसके हृदय में आदिनाथ भगवान विराजमान है, उसके हृदय में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, वो किसकी स्तुति कर रहा है? हृदय में कौन वर्त रहा है, कौन विराजमान हो रहा है? सावधान रहना पड़ेगा हमारे को, हम किसका अपमान कर रहे हैं, हम किसका अवर्णवाद कर रहे हैं। अवर्णवाद, अवर्णवाद माने अपमान, अवर्णवाद माने निंदा, शब्दों में निंदा हो जाती है। कभी कभी हमें ऐसी बातें कहते हैं, कहां जाके जवाब देंगे, भला करे भगवान, भगवान भला नहीं करते, आप गलत कह रहे हैं। आपका भला आपके पुण्य कर्म के वजह से होगा, आपका बुरा आपके पाप कर्म के वजह से होगा। हाँ, भगवान के चरणों की शरण में आने से पुण्य अवश्य बनता है, नो डाउट, भगवान के चरणों की शरण में आने से सहज पुण्य बंधता है, अच्छे कर्मों का आश्रय होता है, उससे फ्यूचर में अच्छी अनुकूलताएं मिलती है। डिमांड मत रखना, मांगने से कहीं राज्य नहीं मिला करते, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। मांगने वालों को क्या देते हैं आप? ये मांगने का काम नहीं है, ये तो कहते हैं, तो भगवान ये ऐसा बतलाते हैं तू उपदेश को स्वीकार कर, बात को समझ एक बार, और हमारे बगल में आकर के बैठ जा। ऐसा कहते हैं भगवान। महावीर स्वामी कौन थे? जीवनी पढ़ो आप। आदिनाथ भगवान कौन थे? परिचय तो पढ़ो आप। सच में क्या है, हम लोग जैन तो हैं, लेकिन जैन शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते। हम कुछ नहीं पढ़ना चाहते, उनके अतीत के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, उनका पास्ट कैसा था, वे कौन थे, कि कहां से आए थे, उन्होंने कैसे कैसे जन्म मरण किए हैं, कौन कौन से भाव धारण किए हैं। आप पढ़ो तो सही, तो आपको पता लगेगा। पार्श्वनाथ स्वामी हाथी के पर्याय में थे, कहीं किस पर्याय में थे, महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, कभी भीम की पर्याय में थे, कौन कौन से पर्याय उन्होंने धारण की थी, और हम क्या हैं? वो पूछ वाला परमात्मा बन सकते हैं, मूछ वाला नहीं बन सकता। वो पशु से परमेश्वर बन सकते हैं, हम नर से नारायण नहीं बन सकते, नहीं हो सकता ऐसा। देवी तो हमारे जैसे ही थे ना, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो पुरुषार्थ करे वो जीव भगवान बन सकता है, कोई भी बन सकता है भगवान। इस पर कई लोग ऐसा कहते हैं हमसे, अरे पंडित जी भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप अच्छे इंसान तो बन जाओ। हम कहते हैं भैया, हम तो आपको इंसान मान की बात कर रहे थे, हमें पता लगा अब कि आप अपने आप को इंसान भी नहीं मानते। हम तो ये समझ रहे थे कि इंसान तो आप हैं ही, मानव तो हम हैं ही, मानवता तो हमारे में है ही। ये बात अलग है कि आज ये मानव अपनी मानवता को खो बैठा है, वो अलग बात है। लेकिन ये जैन दर्शन तो अकर्तृत्व की बात सिखाता है भाई, अकर्तापन सिखाता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात सिखाता है। भगवान भी कर्ता धर्ता नहीं है, इसीलिए तो हाथ पे हाथ धर के बैठे। हाथ पे हाथ धरने का मतलब किसी का कुछ नहीं करता मैं। आत्म ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप बताओ इस मुद्रा का मतलब बता दो आप मेरे को, कोई व्यक्ति हाथ पे हाथ धर के ये प्रतिमाएं क्यों हैं ऐसी? जैन मंदिरों में इस तरह की प्रतिमाएं क्यों होती है? आप दूसरे मंदिरों में चले जाओ, आप हिंदू मंदिरों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हाथ से हाथ धर करके प्रतिमाएं नहीं मिलेगी। आशीर्वाद की मुद्रा मिलेगी, अस्त्र शस्त्र वाली प्रतिमाएं मिलेगी, कोई ऐसी जीव दहाड़ते न मालूम किस प्रकार की उनकी फेस कट कैसा होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये जो जैन मंदिर की मैं बात करता हूँ आपसे, हाथ से हाथ धर के, हम जैन हैं, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हमारी फिलोसफी को पढ़ना पड़ेगा, कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। उनके यहाँ तो भगवान कर्ता धर्ता है, उनके यहाँ कर्म फिलोसफी नहीं है, वहां कर्म सिद्धांत नहीं है, वहां ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता नहीं है, हमारे यहाँ कर्म के उदय प्रमाण व्यवस्था होती है, भगवान नहीं करते। एक बहुत बड़ा अंतर है जैन दर्शन और दूसरे दर्शनों में। अब इससे एक और बात कहूंगी, एक आगे स्टेप पर चल करके, जिस संप्रदाय में, जिस दर्शन में, जिस फिलोसफी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, वो किसी का कुछ नहीं कर सकता, किसी का कुछ नहीं करता। हमारे जिस दर्शन में ये बात कही है कि भगवान किसी का कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमारी आपकी क्या बात थी हम किसी पर का कुछ कर सके? बोलो, जब भगवान ही पर का कुछ नहीं करते, तो सच बात यह है कि हम भी पर का कुछ नहीं करते। और पर पदार्थों का कर्ता धर्ता मानना, इसका नाम मिथ्यात्व, इसका नाम दर्शन मोह। चलती नहीं है हमारी, चलाओ शरीर पे। देखो हम परिवार पे चलाना चाहते हैं ना, हम कहते हैं परिवार की छोड़ो, आप अपने शरीर पे चलाओ। एक बाल को काले से सफेद होने से आप रोक नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप कि बाल को सफेद होने से रोक सके, नहीं रोक सकते आप। आंखों की पलकें झपकने से रोक नहीं सकते, आंखें कमजोर होने से रोक नहीं सकते, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने से रोक नहीं सकते आप। उम्र बढ़ती है, हाथ पांव धूलने लगते हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है। हम कहते हैं करो तो सही, आप कौन चाहता है ऐसा?
जो होता है उसको जो जैसे कोई चीज आप खा रहे हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है,
हम वही चीज आपको बतलाना चाह रहे हैं, हम वही चीज बतलाना चाह रहे हैं आपको। उनका कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन काम तो आपके कर्म के उदय के हिसाब से होगा। आपकी जो शरीर संरचना है ना, ये शरीर संरचना नाम कर्म के आधार पर मिली है। ये नाम कर्म को पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर है वो नाम कर्म। इस शरीर रूपी बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है, इस बिल्डिंग के अंदर कितनी खिड़कियां होगी, कितने दरवाजे होंगे, और कौन सा पुर्जा हिलेगा, कौन सा बल्ब जलेगा, कौन सा डाउन हो जाएगा, कौन सा फ्यूज हो जाएगा, कान हम वही कह रहे हैं कि इसमें आपका पुरुषार्थ नहीं चलता भाई, पर द्रव्य में आपका पुरुषार्थ नहीं चलता, अपने में अपना पुरुषार्थ चलता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आपका पुरुषार्थ चलता है, मोक्ष मार्ग में आपका पुरुषार्थ चलता है, मुक्ति प्राप्त करने में आपका पुरुषार्थ चलेगा, शरीर में आपका पुरुषार्थ नहीं चलता। हम ये कहते हैं यदि आप शरीर में पुरुषार्थ चला सकते होते तो दुनिया में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। कौन चाहता है बीमार पड़ना, कौन चाहता है कि मेरे छींके आना चालू हो जाए? कभी आपको ऐसा लगता है मुकुंद भाई, ऐसा लगता है? बहुत समय हो गया पंडित जी बीमार नहीं पड़ा, तो बीमार नहीं कभी लगता है, कभी ऐसा सोचते हैं आप? बहुत समय से फीवर नहीं हुआ मेरे, होना चाहिए, कोई नहीं सोचता है। कभी ऐसा सोचते हो आज तक कभी मेरे फ्रैक्चर नहीं हुआ, कि फ्रैक्चर होने पे हड्डी टूटती है तो कैसा दर्द होता है, वन टाइम एक्सपीरियंस को होना चाहिए। बोलो, हम सोचते हैं ऐसा, कोई नहीं सोचता है। हर व्यक्ति हमेशा अपने कल्याण के बारे में ही सोचता है, अपनी भलाई के बारे में ही सोचता है, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हुए भी शरीर जवाब देता है, काम करना बंद करता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमारे कंट्रोल में नहीं चलता है, डायबिटीज हो जाती है, अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है, कैंसर हो जाता है, बस वो कुछ इशारा कर रहे थे मेरे को बोलो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना ये सब चीजें, हमारे कंट्रोल में वो तो आप करो, करके देखो आप, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हम। हम यही कह रहे हैं तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं है, जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, होगा कैसे? कर्म के हिसाब से होगा। मुझे याद आता है एक प्रसंग, एक बार जंगल में ऐसा हुआ कि बहुत सारे जानवर जो जंगल में रहते थे उन सब के बीच में ऐसा कुछ मन में आ गई कि इलेक्शन होने चाहिए। क्या दादागिरी मचा रखी है शेर ने, ये राजा बनेगा, ये इसकी मोनोपोली नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे। हाँ इसको भी अधिकार है, ये भी इलेक्शन में खड़ा हो, इसको भी वोट मिलेंगे और ये जीतता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन होना चाहिए। सारा जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, अपने यहाँ जंगल में भी जो है इलेक्शन होने चाहिए। कई लोगों ने समर्थन किया, बात जच गई लोगों को कि ठीक है कोई बात नहीं, इलेक्शन कराई लिए जाए। कई प्रस्ताव आए, कई लोग इलेक्शन में खड़े हुए, हाथी भी खड़ा हुआ, बंदर भी खड़ा हुआ, गेंडा था, शेर भी खड़े हुए, इलेक्शन में थे बहुत सारे लोग, लेकिन सबसे ज्यादा वोट मिले किसको मिले बतलाओ? आपके यहाँ सबसे ज्यादा वोट किसको मिलते हैं? सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं जो सरल हो, अच्छा कार्यकर्ता हो, एक्टिव हो, सबसे ज्यादा वोट तो उसी को मिलने चाहिए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो अच्छा कार्यकर्ता हो, सक्रिय कार्यकर्ता हो, ढीला व्यक्ति नहीं चाहिए हमारे को। तो पता है आप, सबसे ज्यादा वोट मिले बंदर को और राजा बना दिया गया उसको। अब बंदर का राज चलने लगा, वानर राज चलने लगा जंगल में, वो राजा हो गए, बहुत एक्टिव, भाग दौड़ उछल कूद सब कुछ कर सकता है, बहुत एक्टिव है, ठीक है राजा बन गए। एक दो दिन हुए, तीन दिन हुए, राजा हुए, उनका राज चलने लगा। एक हिरण के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, जैसे ही हिरण के बच्चे को शेर ने पकड़ा तो तो हिरण को लगा कि राजा का सहारा लेना चाहिए अपने को। वो दौड़ती हुई पहुंची राजा के पास में और बंदर से कहा कि हे वानर राज, मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, यही पास में ही है, आप चल करके बचाओ। ठीक है, अभी चलता हूं। वो तुरंत वहां से तैयार हुए और वो उछल कूद करते हुए आए वहां, और जहां पकड़ रखा था वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने लगा। फिर कहा बचाओ इसको, फिर इधर से उधर छलांग लगाने लगा कि कुछ करो तो सही। फिर इधर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इधर से उधर छलांग लगाता है, उधर से उधर छलांग लगाता है। फिर क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को मार के खा जाएगा। कि देख, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को मार के खा जाएगा। फिर चुप रहे, तेरे बच्चे का कुछ भी हो, मेरी भाग दौड़ में कुछ कमी हो तो बता। आपकी भाग दौड़ में तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन ये आपकी भाग दौड़ क्या करने में समर्थ है ये तो बताओ। आपकी भाग दौड़ से होगा क्या वो तो बताओ हमारे को। कुछ नहीं होगा, कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है भाग दौड़ से। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति हमारी दिखाई दे रही है। हम खूब भाग दौड़ करते हैं। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है और शाम को $2 भी नहीं मिलते, उसको लात मार के भगा दिया जाता है। और एक व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, और बरसात होती है उसके यहाँ डॉलर की। बोलो हमारे कमाने से नहीं आता है भैया, हमारे कमाने से पैसा आता नहीं है, हमारे नहीं करने से वो जाता नहीं है। एक सेठ जी जीवन भर बहुत काम करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे, पाई पाई इकट्ठा करके वे करोड़पति अरबपति बन गए। खूब दुकानें चलाई, खूब बिजनेस चलाया। हम कहते हैं उनके घर में आज एक पोते ने जन्म लिया, जन्म से अरबपति है या नहीं है बोलो। उसने अरबपति होने के लिए कितनी दुकान चलाई, कितने बिजनेस किए, कुछ नहीं किया। आप कमाते हैं दूसरों के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। हम कहते हैं छोड़ करके जाने के लिए नहीं, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भोगने की सामर्थ्य नहीं है। अपनी आसक्ति को घटाओ भैया। ये आसक्ति क्यों नहीं घट रही है ये समझो एक बार कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान किसी का भला बुरा करते नहीं है, हम किसी का कुछ कर नहीं सकते हैं। शरीर मुझसे भिन्न है, जो फल मिलता है वो अपने ही कर्मों का फल मिलता है। मेरे कर्मों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा मुझे फल नहीं दे सकता है। और मुझे यदि अपना कल्याण करना है, अपना भाव सुधारना है, अपना जीवन सुधारना है, तो मैं स्वयं ही सुधार सकता हूँ, किसी की कृपा से मेरा भला हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई पोपाबाई का राज नहीं है कि आशीर्वाद दिया और कल्याण हो गया, ऐसा राज नहीं चलता है। किसी का आशीर्वाद मिल गया हमारे को, माथे पर लगा लिया हमने, किसी का हाथ लग गया और कल्याण हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसे कल्याण नहीं होता है। आशनाथ के ऊपर कर्मों का फल नहीं मिला उनको, कमट उपसर्ग नहीं करता रहा, पत्थर बरसते रहे, ओले बरसते रहे, बोलो रोक लेते वो उसको कि नहीं, पाप कर्म का उदय आएगा तो भोगना ही पड़ेगा ना भैया। पार्श्वनाथ स्वामी हो, जो महावीर स्वामी हो, आदिनाथ भगवान हो, उपासनाथ स्वामी हो, जिन जिन तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हुए हैं, जिन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुए हैं, उन्होंने उपसर्ग को दूर करने के लिए किसी मंत्र का जाप नहीं किया। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी कोई मंत्र बता दो, है आपके पास में कोई मंत्र? कि मंत्र तो बता सकता हूं लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं। क्या ऐसा मंत्र बतला सकते हैं कि आप भगवान बन सकते हो? बोलो भगवान बनना आपको पसंद है कि पैसा कमाना पसंद है? आपको ऐसी चीज की तैयारी करनी चाहिए, ऐसी चीज की पैकिंग करनी चाहिए, ऐसी चीज को साथ में रखना चाहिए जो ले जाने की व्यवस्था हो, जो चीज जा सके। अच्छा बतलाइए, आप यहाँ से सब फ्लाइट में सफर करते हैं, सब इंडियन है मैक्सिमम सभी, तो यहाँ से जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में जाने के लिए आप ऐसी चीजों की पैकिंग करते हैं ना जो फ्लाइट में अलाउड हो, या आप फ्लाइट में ऐसी चीज ले जाने के लिए पैकिंग करते हैं जो अलाउ नहीं है? बोलो क्या करते हैं? जिस चीज को ले जाने की परमिशन होगी आपको उसी चीज की पैकिंग करना चाहिए। ये तो हम कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ तो सब होशियार बनते हैं। हम कह रहे हैं आपको परभव में क्या चीज ले जाने की परमिशन है, एक बार वो देख लो। और हम जितनी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको परभव में ले जाने की परमिशन हो। फिर क्या होगा, वहां एयरपोर्ट पर जहां चेकिंग होगी वहां कहेंगे नहीं, नॉट अलाउ, उसको बाहर निकाल दो, ये नहीं ले जा सकते किताब, ये भी नहीं ले जा सकते, ये भी नहीं ले जा सकते, किताब में तो लाया ही यही होगी, कुछ भी हो ये चीज का अलाउ नहीं है। तो हमें परभव में जाना है यहाँ से, तो क्या क्या चीज ले जाने की परमिशन है। हम इकट्ठा कर रहे हैं बहुत सारे डॉलर, बैंक बैलेंस, हमारे पास में गाड़ी है, अच्छा बंगला हो गया, हम इकट्ठा कर रहे हैं किस लिए, ले जाने के लिए कि नॉट अलाउ, फिर हम नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या करें, कि उस चीज की पैकिंग करो जो चीज आप परभव में ले जा सको। क्या जाएगा आपके साथ में, आपके परिणाम आपके साथ में जाएंगे, हमारे भाव हमारे साथ में जाएंगे, हमारे कर्म हमारे साथ में जाएंगे। जैसा कर्म हमने बांधा है वैसा कर्म हम परभव में साथ में लेकर के जाएंगे। इसलिए सावधान रहें कर्म करते समय, क्योंकि फल भी अकेले को ही भोगना पड़ेगा। कर्म करते समय ये जीव सावधान हो जावे तो उसका फल भोगते समय इसको रोना नहीं पड़े। इसलिए भैया ये जो मोहनी आदि जिन कर्मों की यहाँ चर्चा चल रही है, ये कर्म क्यों बंधते हैं और किस तरह से बंधते हैं, एक बार इस कर्म फिलॉसफी को जान ले लें तो कर्मों से मुक्त होने के उपाय की चर्चा सार्थक हो सकेगी। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये मनुष्य जन्म की सार्थकता स्वाध्याय करने में है, पढ़ने में है, समझने में है। हम सभी इसकी सार्थकता को जानकर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करें, इसी मंगल भावना से बात करें।
अनंत ज्ञान।